जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, यशोदा नंदन व्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Shama Sundara Radha Shama Sundara Radhe Jaya Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Naam Sankirtan Ki, Srila Prabhupada Ki. Om Namah Bhagavate Vasudevaya Om Namah Bhagavate Vasudevaya Om Namah Bhagavate Vasudevaya
Srimad Bhagavatam se paath Skanda 8 adhyay 9 shlok sankhya 22 Te palayantah samaya asuraha sakrutam nrupa tusnim asanna krut sneha stribibata jugupsaya
तो हम लोग अभी अनुवाद पढ़ते हैं सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं हे राजन क्योंकि असुरों ने वचन दिया था कि वह स्त्री जो कुछ भी करेगी चाहे न्यायपूर्ण हो या अन्यायी उसे वे स्वीकार करेंगे अतएव अब अपना वचन रखने अपना संतुलन दिखाने तथा स्त्री से झगड़ा करने से बचने के लिए वे मौन रहे आज का श्लोक
तस्याम कृताति प्रणयः प्रणयापायकातरः
Yeah.
बहु माने न चावद्धा नौचो किंचन विप्रियन तस्याम कृताति प्रणयः प्रणयापाय कातरः बहु माने न चावद्धा नौचुः किंचन विप्रियन तस्याम कृताति प्रणयः प्रणयपाय कातरः बहु माने न चावद्धा नौचु किंचन विप्रियम् बोलिए शब्दानुवाद तस्माम मोहिन मूर्ति की कृतति प्रणयः घनिष्ठ मैत्री होने से प्रणय पाय कातरः इस भय से भयभीत कि उसके साथ उसकी मैत्री कहीं टूट न जाए बहुमाने न अत्यधिक सम्मान तथा आदर के साथ च भी आबद्धः उससे अत्यधिक आसक्त होकर न नहीं उचुः उन्होंने कहा किंचन कुछ भी नहीं विप्रियम जिससे मोहिन मूर्ति उनसे प्रसन्न हो जाए अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा असुरों को मोहिन मूर्ति से प्रेम तथा उसके प्रति एक प्रकार का विश्वास हो गया था और उन्हें भय था कि उनके संबंध कहीं डगमगा न जाए अतएव उन्होंने उसके वचनों का आदर सम्मान किया और ऐसा कुछ भी नहीं किया कहा जिससे उसके साथ उनकी मित्रता में बाधा पड़े तात्पर्य असुरगण मोहिन मूर्ति की छलपूर्ण युक्तियों तथा मैत्रीपूर्ण शब्दों से इतने मुग्ध हो गए कि यद्यपि देवताओं को सर्वप्रथम अमृत बांटा गया तो भी वे मात्र मीठे वचनों से ही शांत बने रहे श्री भगवान ने असुरों से कहा देवतागण अत्यंत कंजूस है अतएव वे पहले ही अमृत पी लेने के लिए उत्सुक हैं अतएव उन्हें ही पहले पी लेने दो किंतु तुम तो उन जैसे नहीं हो, अतएव तुम थोड़े समय तक प्रतीक्षा कर सकते हो। तुम सभी वीर हो और मुझसे इतने प्रसन्न हो, तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कि जब तक देवता अमृतपान कर न लें तब तक तुम लोग प्रतीक्षा करो। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचने गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु श्रुति देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवार्षादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्योदेशतारिणे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी ने पिछले एक श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के टीका का उदाहरण देते हैं। भगवान ने ये जो मोहिनी मूर्ति धारण की है और ये जो मोहिनी मूर्ति भगवान का रूप है और जो लक्ष्मी माता है लक्ष्मी देवी है वो भगवान कृष्ण की संगिनी है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ऐसे प्रतीत होता मानो मोहिनी मूर्ति माता लक्ष्मी को चुनौती दे रही है। लक्ष्मी देवी नारी होने के कारण बहुत अत्यधिक सुंदर होने के कारण वो उन्हें गर्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान जो सर्वाधिक सुंदर है वो जब स्त्री रूप का धारण करते हैं ऐसे लाखों करोड़ लक्ष्मियां का सौंदर्य को मात दे देते हैं। क्योंकि स्वयं भगवान जब स्त्री नारी का रूप धारण करते हैं तो वो इस प्रकार लक्ष्मी देवी को सौंदर्य को मात दे देते हैं। पिछले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक शब्द व्यवहार करते हैं उप वंचयन उप संचरे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे भगवान श्री कृष्ण देवताओं को ऐसे मीठे शब्दों से वंचना करने के लिए सारे योजना बनाए हैं। देवता लोग असुर लोग जो है असुर लोगों को वंचना करने के लिए, जो असुर लोग है उनका प्रमुख कार्य जो है प्रमुख लक्षण है, क्या उनका प्रमुख लक्षण है? भगवान कृष्ण ने गीता में उसको वर्णन करते हैं कि काम आश्रित दुष्पुरम, एक काम उपभोग परमा, काम उपभोग परमा, यानी जीवन में इंद्रिय तृप्ति करना ही सर्वोत्तम लक्ष्य है। सर्वोत्तम लक्ष्य उनका है जीवन में इंद्रिय तृप्ति करना। गीता में आप देखेंगे भगवान ने 16 अध्याय में बताते हैं कि बहुत सारे कई 8-10 श्लोक में ऐसे एक ही श्लोक में भी 2-3 बार ऐसे व्यवहार किए हैं। तो काम आश्रित काम क्रोध परायणा, इस प्रकार भगवान काम उपभोग परमा, और शुरुआत में भी जो छोटा सा डेफिनेशन देते हैं असुरों का, तो वहां पर भी लिखा है कि काम क्रोध, काम क्रोध यानी जो क्रोध है वो भी काम का रूपांतर है, रूपांतरण है। जैसे दही है दूध का रूपांतरण है, तो इसी प्रकार काम जो है उसके बाद अगर काम पूरा नहीं हुआ क्रोध का रूप धारण किया, अगर काम पूरा हो गया फिर लोभ का रूप धारण किया करता है। यानी काम क्रोध लोभ है ये नरक का रास्ता, इसे भगवान ने 16 अध्याय में बताते हैं। तो इसका काम क्रोध और लोभ का इसका भी काट है यज्ञ दान तप क्रिया, यज्ञ दान तप क्रिया पावनानि मनीषिणा न त्यजंत कार्य में वही। तो असुर लोगों का एक प्रमुख लक्षण यह है कि वो काम से प्रभावित होते हैं। काम इंद्रिय तृप्ति को, इंद्रिय तृप्ति पर बहुत लालायित है, अत्यधिक आसक्त है। जैसे अन्य शास्त्र में भी इसका वर्णन है, जैसे भगवदगीता में भगवान बताते हैं 16 अध्याय में। और एक गुण है असुर लोगों का, अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ति जे तपजना। असुर लोग जो होते हैं, नास्तिक लोग जो असुर लोग होते हैं, वो अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते, तो शास्त्र विरुद्ध यज्ञ तपस्या पूजा उपासना करते हैं, शास्त्र को त्याग देते हैं, शास्त्र नहीं मानेंगे परंतु पूजा उपासना तपस्या व्रत करते रहेंगे। उन्हें जब कोई प्रामाणिक तौर पर कोई साधु गुरु संत बताएंगे कि इस प्रकार करिए, अरे हमसे क्या आप ज्यादा जानते हैं, हम कब से करके आ रहे हैं, ये करते हैं, हाँ ये हम हमें सिखाएंगे, तो वो मानेंगे नहीं। कोई अच्छा वैष्णव साधु गुरु जो बताते हैं कुछ विधि, प्रामाणिक विधि शास्त्रों से, तो उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर में रहता है, तो आसानी से स्वीकार नहीं करेगा, घमंडता रहता, दंभ अहंकार। असुर लोगों का जैसे हमने एक प्रमुख लक्षण बताए कि काम उपभोग परमा, असुर लोगों का प्रथम लक्षण है कि काम उपभोग परमा, जीवन का चरम लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति करना, इंद्रियों को संतुष्ट देना। तो उसी प्रकार इसका बाजू में मतलब ये है दो परिपूरक, एक और लक्षण है जो असत्यम अप्रतिष्ठम थे जगत आहुर अनिश्वरम, जगत आहुर अनिश्वरम। तो बताते हैं कि ये जो सृष्टि है असत्यम, ये सत्य नहीं है, ये सृष्टि मिथ्या है। और अप्रतिष्ठम थे, ये जो सृष्टि है इसका कोई आधार नहीं है, ऐसे टिका हुआ है, इसका कोई आधारशिला नहीं है। जगत आहुर अनिश्वरम, कोई नियामक नहीं है, उसको कोई नियम नहीं बनाता, किसके नियम से ये परिचालित नहीं होता है, ये अपना। अगर फिर बताते हैं अप्रतिष्ठम थे अपरस्पर संभुतम, यानी परस्पर संभुतम मतलब कोई व्यक्ति कुछ कार्य किया, जैसे ग्लास है मैं उठाऊंगा तो एक व्यक्ति यानी मेरा हाथ ग्लास के साथ स्पर्श हुआ, परस्पर दोनों आए, तो अपरस्परम संभुतम बताते हैं कि ये अपने आप ही हुआ, एक धमाका हुआ या डार्विन फिलोसफी फिर आ जाता साथ में, ये बताते हैं कि अपरस्परम संभुतम, कोई ऐसे कारण नहीं है जगत सृष्टि होने का। अगर कारण है तो किम काम अहेतुकम, एक काम स्त्री पुरुषों का संयोग ही इसका कारण है संसार का, इस सृष्टि का कारण ही स्त्री पुरुषों का संयोग। तो ऐसे आप देखेंगे देश दुनिया में बहुत से धार्मिक संस्था है, तो वो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं कि एक काम वासना को ही बढ़ावा देते, इनका लक्ष्य ही काम वासना तृप्ति करना, उल्टी घूम फिर के यही होता है उनका। तो क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं है ऐसे, तो आसुरी प्रकृति आसुरी लक्षण है। असुरगण इस प्रकार ये जैसे प्रमुख लक्षण है काम उपभोग परमा, ये क्यों आता है, क्योंकि वो भगवान को नकारते हैं। रावण, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल, दंतवक्र, जैसे हिरण्यकश्यप आप सुनते हैं गीता ज्ञान दे रहा था, जब हिरण्यकश्यप का मृत्यु हो गया, परिजन ने संताप विलाप कर रहे थे, तो गीता ज्ञान दे रहे थे, आत्मा अविनाशी है, उसका ना जन्म है ना मृत्यु है। तो हम भी इस प्रकार दैव योग से जन्म लिए हैं, फिर एक दिन मरेंगे, पूरा भगवत गीता कहा सुना दिए। रावण आप जानते हैं बड़ा विद्वान है और बहुत बड़ा ज्ञानी है, बहुत बड़ा ब्राह्मण है, परंतु फिर भी उन्हें असुर कहते हैं हम। हिरण्यकश्यप दिखने में बहुत सुंदर है, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, फिर भी वो असुर है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के सत्ता को चुनौती देते हैं, कृष्ण को नहीं मानते, भगवान राम को नहीं मानते, सब कुछ करेंगे इसलिए फिर असुर कहे जाते हैं, वो भगवान को नहीं मानेंगे। जैसे हिरण्यकश्यप ने बोला ना, कहाँ है तुम्हारा हरि, क्या ये खंभे में है, क्या तुम्हें ये रक्षा करेंगे, तो बताइए तुम कहां से बल प्राप्त करते हो, तुम कहां से बल प्राप्त हो, कौन तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। तो प्रहलाद महाराज बोले कि पिताजी श्री, आप जहां से बल प्राप्त करते मैं भी वहीं से बल प्राप्त, बल का स्रोत तो एक ही है। नहीं, तुम्हें भला तुम्हारा हरि रक्षा करता हो, मैं तो सर्वेश्वर, मेरा पूजा करते हैं, मेरा सुनाम तो सब जगह में है, मेरा शक्ति से, मेरा भ्रुकुट हिलने से देवता लोग कांपते हैं, शनिदेव को पाप उछ करके बना के रखा हूं, तो भला मैं कैसे, मैं किसका अधीन हो सकता हूँ, मुझे भला कौन कंट्रोल कर सकता है, आदेश दे सकता है, मुझसे बड़ा भला बड़ा कौन हो सकता है। असुर लोगों का इस प्रकार एक गुण है, लक्षण है, गुण तो नहीं, एक लक्षण है, असुरों का लक्षण है कि वो सिद्ध हम, कि सिद्ध हम को अन्य अस्थि सदृश मया, यानी मैं ही सिद्ध हूं, परफेक्ट हूं, यानी मैं सिद्धि प्राप्त कर चुका हूं, यानी जो भी कार्य है, असुरों का ये लक्षण है, जो भी कार्य है उसे चाहिए मुझसे भला अन्य दूसरा कौन योग्य हो सकता है इस कार्य के लिए, या कुछ बोलना हो, या कुछ पदवी प्राप्त करना हो, या राजनीति में लड़ना, एक पोस्ट लेना हो, या कोई भी कार्य करना हो, कुछ भी, तो कौन अस्थि सदृश मया, मुझसे बड़ा कौन योग्य हो सकता है, या सिद्ध, मैं तो परफेक्शन, मैं सबसे अच्छा बोल सकता हूं, कह सकता हूं, मैं योग्य हूं उस पात्र के लिए। तो ये यानी और किसी का असुरी गुण है, ये प्राय सब में पाया जाता है कम बेसी के। तो ये चाहते हैं कि ये असुरी गुण है, ये असुरी गुण के व्यक्ति ये चाहेंगे कि दूसरे कोई अगर कुछ बोलता है, कुछ सिखाता है, कि शास्त्र के बारे में बोलता है या कुछ भी हो, तो वो उन्हें पसंद नहीं आएगा, अरे ये मुझसे भला कैसे श्रेष्ठ बोल सकता, अधिक बोल सकता है, ज्यादा अच्छा बोल सकता है, नहीं मैं बोल सकता हूँ, वो उसका स्टैंडर्ड नहीं फॉलो मानेगा, तो उसका वो जो भी बोले, एक आधे अच्छे बुरे जो भी बोले उसे स्वीकार नहीं करेगा, अरे मुझसे कैसे श्रेष्ठ बोल सकता है, ये मुझसे ज्यादा अधिक कैसे बोल सकता है। आसुरी ये नहीं, आत्मसंभाविता स्तब्धा, ये अपने आत्म गरिमा में इतने बड़े चढ़े होते हैं, वो किसी की वश्यता स्वीकार करना नहीं चाहेंगे, दूसरे अथॉरिटी को स्वीकार करना नहीं चाहेंगे, वो हमेशा वो अपना बल पौरुष इसको दिखाएंगे, और ये भी सोचेंगे कि मैं, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि वो तपस्या भी करेंगे, दान भी देंगे, और यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, और साथ साथ में धार्मिकता में भी वो क्या करेंगे ना, अपना पूजा प्रतिष्ठा को रखेंगे, इस बहाना में अपने पूजा प्रतिष्ठा को वहां रखेंगे कि मेरा ऐसे, अरे मेरा तो समय जा चुका है, मृत्यु के बाद मेरा कुछ ऐसे समाधि क्यों ना बन जाए, मैं भी इस प्रकार एक बड़ा आचार्य क्यों ना बन जाए, मेरा लोग मुझे प्रणाम करना चाहिए, मैं बड़ा एक आध्यात्मिकवादी के रूप में परिचित होना चाहिए, समाज में मुझे जानना चाहिए, मेरा समय जा चुका है, मैं तो कुछ करना चाहिए, कैसे ना कैसे मुझे एक 10-15-20-50 मंदिर का मैं महंत होना चाहिए मुझे इस प्रकार। तो इस प्रकार एक जैसे रूप गोस्वामी ने इन सारी चीजों को मना कर रखे हैं कि अधिक शिष्य नहीं बनाना चाहिए, अधिक मठ मंदिर नहीं बनाना चाहिए, अधिक फलवार स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें व्यक्ति को घमंडता ला देती है, व्यक्ति को भगवान के प्रति शरणागत भावना नहीं लाता, ये भौतिक पूजामान प्रतिष्ठा को बढ़ाता है व्यक्ति के अंदर में। और ये बहुत सूक्ष्म रूप में रहता है, पता ही नहीं चलता है। यहां तक कि बड़े बड़े उच्च स्तर में पहुंचने पर भी ये सारे कारण होता है, व्यक्ति को फॉल डाउन करने का, नीचे गिरने का कारण होता है। हम कह सकते हैं जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उन्होंने बोले थे कि राधा कुंड में मेरा समाधि होना चाहिए, तो हम बोलेंगे तो फिर ये तो भी इस प्रकार है। देखिए, गोदास और गोस्वामी इन दोनों में अंतर होता है। हम लोग भौतिक इंद्रिय तृप्ति के अधीन में है, इंद्रियों के अधीन में है, इंद्रियों के द्वारा परिचालित होते, भौतिक भोग करने के लिए परिचालित हो, हम भौतिक भोग की लालसा हमें रहता है, भौतिक इंद्रियों के अधीन है। जो गोस्वामी होते हैं वो जैसे उन लोगों का भी अभिलाषा है, मरो ये अभिलाषा विलास कुंजे दियावास, उन लोगों का भी अभिलाषा है, परंतु वो राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, ये भी अभिलाषा एक प्रकार होता है। अभिलाषा तो नहीं जाएगा, परंतु अंतर भी होता है। इंद्रिय अतीत अवस्था में, इंद्रिय अधीन अवस्था में, ये भी अंतर होता है। इसी प्रकार असुर लोग जो होते हैं उनका इस प्रकार विचार होता है, वो चाहते हैं कि संसार को हम ही सर्वश्रेष्ठ है, कौन अस्ति सदृश मया, मैं ही सर्वसर्वांग ईश्वर अहंग अहंग भोगी सिद्ध अंग बलवान सुखी आढ्य धनवान अस्मि। तो ये असुर लोग वो भी वैदिक शास्त्र में अपने को बड़ा चढ़ा मानते हैं, देवता असुर असुर लोग भी वो अपने आप को वैदिक शास्त्र में बहुत उन्नत मानते हैं। देवताओं को बोलते तुम लोग क्या शास्त्र अध्ययन करेंगे, शास्त्र में ज्ञान अर्जन करेंगे, तुम जानेंगे, हम तुमसे श्रेष्ठ है, हमारा सभ्यता बहुत अत्यधिक महान है। जो जिस गुण में होता है उसी प्रकार इन गुणों के मुताबिक वो इस प्रकार एक पूजा विधि अपना लेता। आसुरी जो होते हैं, असुर जो होते हैं, वो रजतम गुण में होते हैं। जजंती जे सात्विक जना, सत्य गुण के लोग जो है वो देवताओं का पूजा करते हैं। जजंती सात्विका देवान, सत्गुणी लोग देवताओं का पूजा करते हैं। जक्ष राक्षसी में राजसाम, जो रजोगुण में द्वारा प्रभावित होते हैं वो जक्ष राक्षसों का पूजा करते हैं। जक्ष जो है जो जक्ष और कुबेर राक्षस जो नैरीति और भूत प्रेत जो है वो तमोगुणी लोग होते हैं, वो भूत प्रेत का पूजा करते हैं। तो व्यक्ति यानी हमें देखना चाहिए, ऐसे नहीं कि राक्षस असुर जो है उनके बड़े बड़े सिंह दांत बड़े बड़े ऐसे होना चाहिए, नहीं। भगवान बोले हैं कि दो प्रकार के सुर असुर, दो प्रकार के लोग संसार में है, देवता और असुर। देवता लोग जो होते हैं वो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, और जो असुर होते हैं वो भगवत विरोधी होते हैं, भगवान के विरोधी में आते हैं। तो यानी मनुष्य में ही असुरी प्रकृति के लोग होते हैं, मनुष्य शरीर में या देवताओं के शरीर में भी। जैसे राहु ने क्या किया, छुप कर जाकर बैठ गया, कहाँ आगे पढ़ेंगे हम लोग। राहु ने छुप कर जाकर सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया, तो भगवान ने उसे पहचान लिए, और सूर्य चंद्र उन्होंने पहचान लिया और बता, भगवान ने उसे तुरंत मार डाले। तो ये असुर लोग जो है वो भी बहुत सुंदर दिखने में होते हैं, परंतु उनका जो आसुरी भावना अंदर में जो भावना है वो आसुरी भावना है। व्यक्ति भले ही बहुत सुंदर दिखे, सभ्य व्यक्ति की भांति दिखे, परंतु उसका जो भावना है आसुरी भावना है अंदर में। हमें जैसे द्विपद पशु, मनुष्य शरीर में है परंतु आचरण पशु प्रवृत्ति के स्वरूप, पशु जैसे हैं। तो इसी प्रकार असुर लोग जो होते हैं ये हमेशा ये भौतिक भोग के प्रति बहुत लालाय होते हैं। और आज के श्लोक में भगवान सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जो असुर लोग हैं, भगवान महिन मूर्ति ने क्या की कि उन्होंने उनके सम्मुख में, असुरों के सम्मुख में देवताओं को अमृत बांट दे दिए, और वो चुप रहे, मौन रहे, क्योंकि पहले वो प्रतिशुद्ध दे दिए थे, पहले उन्होंने प्रतिशुद्ध दे दिए थे। जैसे ही महिन मूर्ति ने असुरों से अमृत कलश ले लिए, तो तुरंत उन्होंने बोले कि अगर तुम लोग चाहते हैं, भगवान महिन्द्रवर्ती बोले कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ये उत्तरदायित्व लूं, ये अमृत को दोनों में बांटूं, तो तुम्हें मेरा ये शर्त स्वीकार करना होगा कि मैं जो करूं चाहे खरा या खोटा, तो तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। परंतु बाद में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते कि असुरों का जो लीडर था इतना चालाक नहीं था, इतना बुद्धिमान नहीं था, उन्हें स्वीकार कर लिए। एक्चुअली क्या होता है, जो व्यक्ति काम से परिचालित होता, कामा अंध हो जाता। काम जो होता ना, एक प्रकार बीमार है, रोग है। तो काम वासना जिनमें आ जाता, वृद्धि होता है, वो अंधा हो जाता व्यक्ति। वो दिखते हुए भी, समझते हुए भी, सुनते हुए भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता, वो सारे बुद्धि विवेक भ्रष्ट हो जाता है। किंग विद्या किंग बुद्धि स्त्री जस्या हृतंग मन, ऐसे गौरवंद स्वामी महाराज बताते हैं कि ऐसे बुद्धि विद्या का क्या महत्व है, क्या मतलब यूज है, व्यवहार है, जिसका मन एक स्त्री के द्वारा हर लिया गया है, यानी काम वासना द्वारा जिसका मन हर लिया गया है, ऐसे बुद्धिया विद्या का क्या महत्व है। तो जैसे ही देवताओं ने असुर ने देखा, महिन मूर्ति को देखे, तो इतने मोहित हो गए काम वासना द्वारा परिचालित बीमार के कारण, इस काम वासना के द्वारा, तो अंधे हो गए, पागल की भांति हो गए। तो इसलिए तो उनका नाम महिन मूर्ति है, भगवान ने महिन मूर्ति के रूप में आए हैं मोहित करने के लिए। तो और एक बातें यहां पर भी बताते हैं, जैसे पहला श्लोक 22वां श्लोक के तात्पर्य अनुवाद में भी बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कि बताते हैं, क्योंकि असुर ने वचन दिया था कि वह स्त्री जो कुछ भी करेगी, चाहे न्यायपूर्ण हो या अन्याय, उसे भी स्वीकार करेंगे। अतएव वह अपना वचन रखने, अपना संतुलन दिखाने, स्त्री झगड़ने से बचने के लिए मन रहे। तो वो आश्वस्त हो गए महिन मूर्ति के बातों से, वो आश्वस्त हो गए। महिन मूर्ति ने साफ साफ बोल दिए बातों को, सत्य बातों को बोल दिए, और उन्होंने बोल दिए कि ये विद्वान का मत है, उन्होंने बोल दिया ये विद्वान का मत है कि तुम लोग इतने बड़े ऋषि के, कश्यप ऋषि के पुत्र हो, इतने ज्ञानी एक ऋषि कश्यप मुनि उनके संतान हो, तुम लोग बहुत विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, फिर भी एक स्त्री को विश्वास करते हो, ये तो विद्वान लोग ऐसे स्वीकार नहीं करते। जैसे कुत्ता है, बंदर है, सियार है, ये अपने यौन संबंध में बहुत अस्थिर होते हैं, आज एक काल को किसी को और परसों किसी को, इस प्रकार परिवर्तन करते हैं, उनका उनमें मैत्रता स्थायी नहीं होता, स्थिर नहीं होता। उसी प्रकार जो स्त्री शरीरिणी है, जो इस प्रकार स्वतंत्रता के नाम पर घूमती है अकेला, तो वो उसी प्रकार है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और ये विद्वान का मत, विद्वान लोग ऐसे बताते हैं, तुम इतना बुद्धिमान एक ब्राह्मण के पुत्र होते हुए भी तुम लोग कैसे मेरे बात पर विश्वास करते हो, ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा हंसी मजाक में ले लिया उसको, असुर लोग काम अंध हो चुके हैं, कामदार सोचा ये भी है कि मजाक है, ये मोहिनी मूर्ति का मजाक है, उसको इस प्रकार ले लिए। अपन भगवान इस प्रकार छल करते हैं, छल के द्वारा उनको फंसाते हैं। वो आश्वस्त हो गए, ये हमसे कितना प्रेम करते, कितना हमसे हंसी मजाक करते हैं, काम अंध से प्रभावित है, पागल हो चुके हैं। उनके महिन मूर्ति का जो अदा बोलते हैं ना, मुस्कुराना हर और औरतों का अदा है, जो उसे प्यार समझता वो गधा है। तो इसी प्रकार ये लोग सोचे कि देखो महिन मूर्ति हम कितना प्रेम करते हैं, हाँ हमसे कितना मीठे मीठे बात करते हैं, हमसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बहुत अच्छा है। तो वो इसी प्रकार इसको एक मजाक में ले लिए, इतनी गंभीर बात भगवान बोल रहे हैं तो उसे मजाक में ले लिए। और देव असुरों के सामने में भगवान ने सारे अमृतों को पिला दिए, देवताओं को दे दिए। अच्छा यहां पर एक बात है कि सब लोग पूर्व दिशा में बैठे हैं, सब लोग पूर्व की ओर बैठे हैं, इसका मतलब है ऐसे नहीं कि जैसे कभी कभी सीरियल में आप दिखाते हैं देवता लोग एक लाइन पास में ही हैं, तो फिर पूर्व पश्चिम हो गया ना दिशा, कहीं शुभ कार्य करना है तो पूर्व दिशा में स्नान करना, उत्तम वस्त्र धारण करना है ना, अमृत पान करना है। यहाँ पर लिखा गया है ये कैसा अमृत पान करते, देवता लोग फिर भी जन्म मृत्यु में पड़ते हैं, जो कुंभ मेला लगता है लाखों करोड़ों लोग चले जाते हैं वहां पर, जाके डुबकी लगाते हैं, कितना पैसा दूर दूर से खर्च करके आते हैं, जाके डुबकी लगाते हैं, एक बार अमृत हमें मिल जाए तो बस अमर हो जाएंगे, अजर अमर हो जाएंगे। कैसे अमृत है, देवता लोग अमृत पीते हैं फिर भी मरते हैं, कैसे अमृत भला है ये? वास्तव में अमृत है तो ये भगवत कथा, कथा अमृतम रसमालयम मुहुर ऋषिक भुव भावक पिबत भागवतम। ये जो भागवत है, श्रीमद भागवतम कथा है, भगवान श्री कृष्ण के गुण चरित्र कथा है, यही वास्तव में अमृत है। वो देवता लोग तो अमृत पान करते फिर भी असुरों से पीटते हैं, हैं? असुर लोग बहुत कभी कभी असुर लोग छीन लेते हैं उनके राज्य, आगे भी देखेंगे बलि महाराज ने छीन लेंगे जाकर, फिर जन्म मृत्यु इसी प्रकार। हाँ, इसको पान करने के कारण अरे भगवान ने दिखाए भी है, जैसे उन्होंने आए जो असुर राहु, राहु ने आकर सूरज चंद्र के बीच में बैठ गए, बैठ गया तो क्या भगवान कृष्ण को जो सर्वज्ञ है कि इनके पता नहीं है, सूरज चंद्र को बोलना पड़ा कि भगवान ये असुर है, तो भगवान तुरंत अपना विष्णु मूर्ति धारण किया और सुदर्शन चक्र से उसे काट डाले। तो क्या भगवान को पता ही नहीं था यहाँ? तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान ने ये दिखाना चाहते हैं कि अमृत का भी प्रभाव है, ये अमृत का क्या लक्षण प्रभाव है, क्योंकि राहु ने पान कर लिया था यहाँ तक और भगवान ने सुदर्शन चक्र से यहाँ से उड़ा दिए और वहां नहीं जा पाया, ये शरीर जो था राहु का वो नष्ट हो गया, अमृत के प्रभाव के कारण उसका शरीर जिंदा रहा। तो ये अमृत का प्रभाव दिखाने के लिए भगवान ने इस प्रकार लीला रचे। तो उसे मतलब भगवान तो जाने थे, सब जानते हैं, फिर भी इस प्रकार करते हैं। तो कैसे अमृत है ये, देवता लोग पान करते फिर भी अजर अमर नहीं हो पाते, उन्हें भी मरना पड़ता है। इसे वास्तव में अमृत तो है भगवत भक्ति, भगवान के चरण में जाना और भगवत नाम कीर्तन करना है। नामामृत, नाम रूपी अमृत है ये, जो नाम रूपी अमृत है ये वास्तव में अमृत है। कृष्ण और कृष्ण का नाम अभिन्न है, यही वास्तव में अमृत है। बाकी सब किम औषधि पृच्छति मूढ़ दुर्मति कृष्ण रसायनम पिब। कुलशेखर भगवान बताते हैं भगवान कृष्ण करनामृत में कि किम औषधि पृच्छति मूढ़ दुर्मति, मूर्ख मूढ़ कौन सा औषध पूछते हो? मूढ़ दुर्मति कृष्ण रसायनम पिब, कृष्ण कथा रूपी रसायन को पान करना चाहिए, यही एकमात्र औषधि है। बाकी सब औषधि वो दुख औषधम तदपि दुखम है। जितने भी संसार में बाकी सब औषध है, इस दुख को निवारण करने के लिए जो सब तरीका है, मार्ग है, पथ पंथ है, ये सब, ये जो वो जो पथ है वो इटसेल्फ पथ ही दुख है। दुख औषधि तदप, यानी दुख से भी और दुख है। जो समस्या है, समस्या का समाधान ही वो समस्या से अधिक दुख है, समस्या से भी अधिक दुख है वो समाधान। ये संसार में जितने भी समाधान है, ये समाधान से भी अधिक, ये दुख से भी अधिक दुख है समाधान। तो इसलिए बताते किम औषधि पृच्छति मूढ़ दुर्मति कृष्ण रसायनम पिब। वास्तव में तो रसायन जो है, जो औषध है, ये कृष्ण कथा है, भगवत भक्ति है। तो इसी प्रकार आप देखेंगे भगवान जाकर बताएंगे, आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करेंगे कि एवं सुरासुरगण समदेश काला हेतुअर्थ कर्म मतयपि फले विकल्पा। बताते हैं कि एवं सुरासुर देवता असुरों ने समदेश काल अर्थ मतयपि, मतलब जो देवता लोग असुर लोग है, समदेश स्थान एक ही था, क्षीरसागर, क्षीरसागर में जाकर सब एक साथ जाकर समुद्र एक एकत्रित हुए थे, सब देवता असुर एक ही जगह पर थे। समदेश काल, समय भी एक ही था, एक ही समय पर उपस्थित थे, एक ही स्थान पर एक ही समय में। हेतु, उनका जो कारण था वो भी एक ही था, देवताओं का असुरों का। और मतयोपि, उनका जो अभिलाषा था वो भी एक ही था, परंतु फले विकल्पा, उनका फल प्राप्त करने में एक को कुछ और फल मिला, दूसरों को कुछ और फल मिला। क्यों ऐसा? यत पाद पंकज रज श्रयणन न दैत्य, कि जिनके चरण कमल कृष्ण के भगवान के जो देवतागण है सूर्यगणा, वो भगवान कृष्ण के चरण कमल में शरण ग्रहण करने के कारण उन्हें अंजसाम आपो, वो बहुत जल्दी आसानी से उन्हें अमृत प्राप्त हो गया। जबकि न श्रयणन न दैत्य, दैत्य लोग इस प्रकार भगवान के चरण में शरण ग्रहण न करने के कारण वो मनवांछित फल प्राप्त करने में असफल रहे। एक ही गुण देवताओं का था कि वो भगवान चरण में शरण ग्रहण करते हैं। यही देवता असुर में यही अंतर है कि जो लोग विष्णु भक्त प्रक्त दैव असुर तद विपर्जय, भगवान विष्णु के जो भक्त होते हैं वो दैव कहलाते हैं और जो आसुरी लोग होते हैं उसके विपरीत। तो इस प्रसंग से हम ये सीखें कि हर हालत में हम भगवान के चरण में शरण ग्रहण करना चाहिए और भगवत नाम को ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी आसानी से सबको बिना मूल्य में बिना परिश्रम किए बड़ी आसानी से कृपा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के इस कृपा को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें इस पर संकीर्तन यज्ञ के द्वारा उनका पूजा करना चाहिए। तो किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
शरीर
कहने का तात्पर्य ये है, ये अल्टीमेट हमें सुख देने वाला नहीं है, ये सर्वोत्तम समाधान नहीं है। ये जो अमृत पान है ये भी समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं करता है। ये अजर अमर आध्यात्मिक हमें ये आध्यात्मिक भौतिकता में उन्नत है। जैसे दैवी भोग करते हैं देवता लोग, दैवी भोग करते हैं वो दैवी, हम भी बोलते हैं कि दिव्य जो है, हम जो भगवान को अर्पित करते फूल वो फिर दिव्य हो जाता, प्रसाद भगवान को अर्पित करते वो दिव्य हो जाता है। पर इसमें अंतर भी होता है, ये जो दैवी है देवता लोग जो भोग करते हैं ये अल्टीमेट स्टैंडर्ड नहीं है, ये अल्टीमेट नहीं है, ये संपूर्ण रूप में आध्यात्मिक नहीं है, ये भौतिकता में उन्नत है, ये संपूर्ण रूप में आध्यात्मिक नहीं है। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, यहीं पर रखते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।